Recording in progress.
दूसरी कार शुरू कर लेते हैं। अलहमदुल्ला वकफा
Recording in progress.
अम्माबादीम बसमिल्लाम रजू वजू अन खशिया रब सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक्ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक्ना इज्तिनाबहु रब्बना ज़िदना इल्मा। तो ये हमारी क्लास सहाबियात के सिलसिले वाली क्लास है। वैसे तो ये 4:15 पे नहीं 3:45 पे शुरू होती है, लेकिन आज चूंकि कससुल अंबिया की क्लास के जो हमारे टीचर हैं नुमान साहब, तो वो मसरूफ हैं और अगले 2 मजीद हफ्तों तक वो मसरूफ रहेंगे अपनी यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने फिर कहा था कि वो थोड़ी देर से पहुंचेंगे, तो हमने कहा कि आप आखिरी वाली क्लास कर लें। ठीक है, जो हमारा स्लॉट था साहबियात वाली क्लास का वो हमने उनको दे दिया, तो और उनका स्लॉट फिर हमने ले लिया। तो हमारी क्लास के बाद फिर इंशाल्लाह कसस नबीन की क्लास आज आखिर में होगी। ठीक है, तो सहाबियात के क्लास में आखिरी बात कौन हमें याद दिलाएगा, क्या हो रही थी? रिहान भाई,
शिर्क और तौहीद के बारे में बात करते थे।
शिर्क और तौहीद के बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो वो क्या बात हुई थी?
शिर्क का मतलब होता है कि अल्लाह ताला
अल्लाह ताला को
को
नाकिस समझना। 10 साल यहाँ क्या लिखना है? 10 साल, अच्छा
नाफिस
पिछली क्लास का। ओके, तो ये बात क्यों हुई थी? शिर्क और तौहीद की बात जो पिछली क्लास में हुई थी, तो वो क्यों हुई थी, ये किसी को याद है? ठीक है, किसी को याद आ गया जी?
मुझे
क्यों
ऐसा क्वेश्चन था कि वो ये कि आप में जो परीक्षित हुआ था तो उस वक्त तो उनको दहशत जो है उनकी हुई नहीं कभी नहीं थे वो तो वो क्या ये सब रहते हैं भाव नहीं जानता है।
सही? ठीक है, तो किसी को वाकया याद है कि जिस वाकये को हमने बताया था क्लास में, तो फिर उसके ऊपर अब्दुल्ला सऊद भाई ने ये सवाल किया था, और फिर उसके जवाब में तौहीद और शिर्क की बात आपके सामने की थी। वो वाकया क्या था जी?
वो ऊटी पे आप सरोज नॉर्मल जो दम कराना था तो क्या पड़ा
हाँ ठीक है, तो ये वाकया ये था कि जब नबी अलैहिस्सलाम हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तिजारत, ठीक है, जो उनका कैपिटल था, सामान तिजारत था, वो लेकर के ना ऊंटों के काफले पे जा रहे थे शाम। ठीक है, तो जाते हुए ये वाकया पेश आया था एक्चुअली, राइट? हमने शायद पिछली क्लास में कहा था कि वापस आते हुए पेश आया था, लेकिन नहीं, किताब में लिखा है कि ये जाते हुए वाकया पेश आया था कि दो ऊंट जो थे ना उस काफले के, वो हो गए थे बीमार। तो वो दो ऊंट बिल्कुल काफिले के आखिर में चल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, तो जो गुलाम थे हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के, कौन थे? मैसरा। तो वो चूंकि गुलाम का तो काम होता है खिदमत करना और हर चीज का ख्याल रखना, तो वो उन ऊंटों का भी ख्याल रख रहे थे। ठीक है, तो उनको ख्याल आया कि भाई अगर मैं इस तरीके से पीछे रह गया ना इन दो ऊंटों के साथ, तो फिर तो मैं काफिले से अलग हो जाऊंगा, मसला हो जाएगा ये। तो उन्होंने क्या किया, वो भागे भागे काफिले के आगे गए जहां पे नबी अलैहिस्सलाम जा रहे थे, तशरीफ ले जा रहे थे, अपने अपने ऊंट के ऊपर बैठे हुए होंगे। तो उनको आप को जा करके मैसरा ने कहा कि पीछे जो है ना वो ऊंट दो हैं, बहुत आस्ता आस्ता बीमार हैं, वो चल रहे हैं, तो मसला हो जाएगा। तो आप मैसरा के साथ पीछे आए, और उन्होंने आप ने ऊंटों के ऊपर हाथ फेरा और कुछ पढ़ करके ऊंटों पर थूका। ठीक है, तो वो ऊंट बिल्कुल ठीक हो गए और तेजी तेजी से चलना शुरू हो गए, और बड़ी खुशी में जो है ना वो आवाजें भी निकालना शुरू हो गया, जैसे कि ये लोग आवाजें निकाल रहे हैं खुशी है अंदर। इब्राहिम भाई को कोई परवाह ही नहीं। ठीक, तो इस तरह से वो अच्छी अच्छी आवाजें निकालते हुए आगे चले गए। ठीक है, इसके ऊपर फिर अब्दुल्ला भाई ने ये सवाल किया था कि नबी अलैहिस्सलाम तो उस वक्त तक अल्लाह ताला के नबी नहीं बने थे, ठीक है, तो फिर आप सरसनम ने कैसे पढ़ करके फूंका? भाई ये चीजें तो फिर वही से मिलती हैं ना कि भाई ये पढ़ के फूंक दें, ये वाली आयत पढ़ के फूंक दें तो तबीयत ठीक हो जाएगी। जैसे सूरह फातिहा, सूरह फातिहा क्या है, सूरह शिफा भी है ना, कि कोई शख्स बीमार हो जाए तो आप उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ करके दम कर दें तो अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देंगे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम तो उस वक्त तक नबी मबूस ही नहीं हुए थे, आपसे सल्लम पर कुरान मजीद की आयात ही नाजिल नहीं हुई थी, तो फिर आपसे सल्लम में क्या चीज दम कर दी थी, ठीक है, जिससे कि ऊँट ठीक हो गए। तो उसके ऊपर पर हमने बताया था कि भाई नबी अलैहिस्सलाम उस जमाने में भी क्या थे, मुवहिद थे, तौहीद पर थे, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम उस जमाने में भी शिर्क नहीं करते थे ना, बुतों को नहीं पूछते थे, ठीक है। तो जो शख्स मुवहिद होता है ना, मुवहिद क्या मतलब मुवहिद का, अब इसका मतलब आप लोगों को बताना पड़ेगा, मुवहिद किसको कहते हैं, मुवहिद पिछली क्लास में जो समझाया था उसकी रोशनी में कौन जवाब देगा कि मुवहिद कौन होता है? जी मोहम्मद नुमान,
वो शख्स जो तौहीद यानी एक ही खुदा को सही मानने की सेवा करना, और पिछली क्लास के कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करना चाहें, पिछली क्लास में बात हुई थी कि और बाकी लोग बात करते थे नबी तो नहीं करते था,
ठीक है, लेकिन पिछली क्लास में क्या बताया था, इन्होंने लिखा एक अल्लाह को मानने वाला, अ पर्सन हु वर्शिप्स वन गॉड, अल्लाह, बिलीविंग इन अल्लाह। ये सारे जो है ना वो ऑनलाइन जवाब आ रहे हैं। तो एक और जवाब आया कि बिलीविंग इन अल्लाह एंड नॉट इंडल्जिंग इन शिर्क। पिछली क्लास की रोशनी में कौन जवाब देगा? आप दे रहे थे पहले, आपने हाथ उठाया था, शिर्क जो शिर्क नहीं करता वो मुवाहिद है। इतना आसान होता तो मैं आपसे पूछता क्यों, आप कुछ और बताएंगे?
तो इम्पोर्टेंट जो आपने आया तो शेयर किया होता है तो अलग अलग होता है इम्पोर्टेंट
अनइम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। तो जैसे उन्होंने जवाब दिया कि जो अल्लाह ताला को काबिल समझता हो, ठीक है, हर काम करने के काबिल समझता हो, वो मुवाहिद होता है ना। क्योंकि पिछली क्लास में इसका ऑपोजिट आप लोगों को समझाया था ना, शिर्क। शिर्क क्या समझाया था कि जो अल्लाह ताला को, आप कुछ कह रहे थे, जो अल्लाह ताला को हर काम करने के काबिल ना समझता हो वो मुशरिक होता है। जो अल्लाह ताला को हर काम करने के काबिल ना समझता हो वो कौन होता है, मुशरिक होता है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ कि जो अल्लाह ताला को हर काम करने के काबिल समझता हो वो क्या हुआ, मुवाहिद, ठीक है, वो मुवाहिद हुआ। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या थे, बेसत से पहले, यानी नबी बनने से पहले नबी अलैहिस्सलाम क्या थे, मुवाहिद थे ना, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को हर काम करने का काबिल पहले भी समझते थे, नबी बनने से पहले भी समझते थे, ठीक है। तो अब आप ये मुझे बताएं कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़ करके ऊंटों के ऊपर फूका, ठीक है, तो उन्होंने क्या पढ़ के फूका होगा? आप सरसन ने तो अरबी में पढ़ के फूका होगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम तो उर्दू नहीं बोलते थे, राइट, इंग्लिश नहीं बोलते थे, तो फिर अरबी ही में ही कुछ पढ़ के फूका होगा, ठीक है। लेकिन वो क्या पढ़ के फूका होगा ये आप अपने इमेजिनेशन से बताएं, जब तक तो 1 मिनट में ऑनलाइन भी देख लूं। अल्लाह को जो नाकिस नहीं समझता, जी, वन हु बिलीव्स इन तौहीद, वो बिलीव्स इन नो वन बट अल्लाह सुब्हान तआला, जो अल्लाह ताला को नाकिस नहीं समझता, ठीक है, वही मोहित होता है। तो क्या पढ़ के फूका होगा, आप कुछ कह रहे थे पहले,
तो कुछ कुरान
कुरान तो नाजिल ही नहीं हुआ था उस वक्त, आप
ला इलाहा इल्लल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के फूका होगा।
माशाल्लाह।
माशाल्लाह, ठीक है। यानी मुझे इतनी अच्छी उर्दू अरबी आती होती तो क्या बात थी, लेकिन इतनी आती नहीं है। तो मैं उर्दू में आपको बताता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फूका होगा पढ़ के। द वन हु एट्रीब्यूट्स ऑल क्वालिटीज एंड अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग टू ओनली अल्लाह, हु अंडरस्टैंड दैट अल्लाह इज कंप्लीट। जी, ये चले तो बात हो गई। अब बात ये हो रही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या पढ़ के फूका होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ के ये फूका होगा कि ए अल्लाह, तू ही है जो कि शिफा दे सकता है, तेरे लिए इस ऊंट को ठीक कर देना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तेरा नाम पढ़ करके इसके ऊपर फूंकता हूं, तेरे नाम की बरकत से इसको शिफा मिल जाए। ठीक है, तो चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ऐसी कोई बात फरमा रहे थे और इस तरह की बात करके नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह से जो है ना फिर मुंह मुबारक से फूंक भी दिया, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला क्या करते हैं, ये तो बाद में फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह ताला क्या करते हैं। ठीक है ना, हमें बताया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को तो ये बात पहले से पता थी कि भाई अल्लाह ताला सुनते हैं, अल्लाह ताला सब काम कर सकते हैं, अल्लाह ताला बीमार ऊंट को शिफा दे सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ये करते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर बाद में मुसलमानों को सहाबा किराम को बताया, वो ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अना इंदा ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ वैसे ही मामला करता हूं जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। ठीक है, मैं अपने बंदे के साथ वैसे ही मामला करता हूं जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। अब जब नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 100% गुमान रख करके उस ऊंट के लिए दुआ करी, ठीक है, कि अल्लाह ताला आप तो शिफा दे सकते हैं, आप उसको शिफा दे दीजिए ना, तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की बात को पूरा कर दिया। ठीक है, तो ये अल्लाह से गुमान जो है ना, ये होता है अल्लाह ताला से काम करवाने का तरीका। ठीक है, अगर आप अल्लाह ताला से गुमान अच्छा नहीं रखते हो, ये गुमान रखते हो, गुमान का मतलब ये सोचते हो कि अल्लाह ताला तो नहीं कर सकता, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, तो इस तरह का गुमान जो है ना फिर अच्छा नहीं, गुमान अच्छा गुमान नहीं होता। ठीक है, तो अल्लाह ताला की फिर मदद क्यों आएगी, भाई तुम मेरे साथ अच्छा गुमान ही नहीं रखते तो फिर मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं। जी
हम ये कह सकते हैं कि शक के बाद गुमान आता है, पहले शक पहले सोचो था, फिर उस शक के बाद उसके बाद गुमान आता है, चलो गुमान फिर एक फर्दर स्ट्रेस हो गया है उसके बाद।
शक के बाद, ये बुरा गुमान के बारे में आप बात कर रहे हैं कि पहले वसवसा आया, फिर वो शक बन गया, फिर वो बुरा गुमान बन गया। नहीं, इतना खाओ नहीं, ऐसी कोई तरतीब तो नहीं समझ में आती कि ये इस तरतीब से चलता है मामला। वगैरह है अल्लाह इसको शिफा अता फरमा दे, बस काफी है। ठीक है, तो उसके लिए ना अगर आपको कोई वजीफा ना आता हो, कोई आपको बड़ी आयात वगैरह ना नाजिल हो, तो आप जब इस किस्म की बात अपनी जुबान में भी करके कह देते हैं ना अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला उसको भी पूरा कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला को कोई जरूरी नहीं है कि नहीं तुम अरबी में मुझे बोलोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, उर्दू में मैं नहीं सुनता तुम्हारी बात। अंग्रेजी में बोलोगे तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। ठीक है, अरबी चाहिए, अरबी के बगैर आई डोंट रिस्पॉन्ड, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो नबी अलैहि सलाम का गुमान उस वक्त भी अल्लाह ताला के साथ 100% था, विदाउट एनी शिर्क। ठीक है, अल्लाह ताला नबी अलैहि सलाम की बात को पूरी फरमा दिया करते थे। जी
अंडरस्टैंडिंग सही नहीं मिलती, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है वो भी यही एक किस्म की चीज होती है कि अल्लाह ताला से आपने अल्लाह ताला से गुमान रखा, मतलब जो करने वाली जात है वो तो अल्लाह ताला की है, कादर मतलब वही है, वही सब कुछ करते हैं। तो अगर कोई काफिर भी ये सोच ले कि ये मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो वो हो जाता है वाकई में, तो प्लेसिबो इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो
प्लेसिबो इफेक्ट तो वैसे मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता है कि मेडिसिन आप खा रहे हैं लेकिन आप मेडिसिन से ये गुमान रख रहे हैं कि मुझे ठीक नहीं कर सकती, तो मेडिसिन कभी कोई असर नहीं होता आपके ऊपर। ये आमतौर पे गो यानी नॉन मुस्लिम्स ये मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको खाली ये कैप्सूल दे दें जिसके अंदर कुछ भी ना हो, कोई केमिकल्स ना हो, कोई मेडिसिन ना हो, लेकिन आप उस कैप्सूल को ये सोच करके खाएं कि इस कैप्सूल से तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो वाकई तबीयत ठीक हो जाती है। ठीक है, वाकई तबीयत ठीक हो जाती है, तो वो क्यों ठीक हो जाती है, भाई कैप्सूल के अंदर तो कुछ था ही नहीं, कोई मेडिसिन थी नहीं, अब कैसे खाने वाले की तबीयत ठीक हो गई, गुमान की वजह से ठीक हो गई। तो ये बहुत रियल चीज है। ठीक है, इसी वजह से ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अगर आप कर सकें, खुदा ना खास्ता किसी जानने वालों को अगर कैंसर हो जाए, ठीक है, आपके खानदान में खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन किसी को अगर हो जाए तो कोशिश करें कि उसको पता ही ना चले कि कैंसर हो गया उसको, ठीक है, क्योंकि कैंसर इतना मशहूर हो चुकी है, खतरनाक बीमारी, कि इसके बाद कोई नहीं बचता। तो जिसको पता चलता है ना कि उसको कैंसर हो गया है, अब वो नहीं बचता, ठीक है, और फिर उसका कैंसर बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, फिर वो मारा जाता है फिर, ठीक है। लेकिन अगर उसको पता ही ना हो ना, तो हमने एक नहीं, एक से ज्यादा लोगों को देखा, हत्ता कि हमारे अपने वालिद मोहतरम, उनको कैंसर 3-4 साल पहले डायग्नोस हुआ हुआ था कैंसर, लेकिन बेचारे इतने जयीफ थे और उनको बताया ही नहीं किसी ने, उनका इंतकाल कैंसर से नहीं हुआ, 3-4 साल तक उनके पास कैंसर रहा, लेकिन उनका इंतकाल कैंसर से नहीं हुआ, उनका कैंसर बढ़ा ही नहीं। इसी तरह और भी जानने वाले थे कि उनको पता ही नहीं चला कि उनको कैंसर था, उनका कैंसर को कुछ नहीं बढ़ा, और एक बंदे को डॉक्टर साहब कहते हैं तुम्हारे पास 4 महीने हैं बस, वो ही मेक श्योर कि वो 4 महीने के बाद जिंदा ना रहे, ठीक है, वो बंदा गया 4 महीने के अंदर, ठीक है, पूरा चिल्ला लगा के वो दुनिया से अगले दिन जहां को रसीद हो जाता है जी। और
ठीक है, 5-6 साल पहले एक मुजरिम के सामने अल्लाह गया था, फिर लेकिन एक उसका प्रोटोटाइप बनवाया तो लिविंग उससे 10 मिनट का एक इफेक्ट, तो
हाँ, ये वाकया भी सुना है कि असल में सांप ने उसको नहीं काटा था, लेकिन उसको कहा गया था कि अब सांप तुम्हें काटेगा, हम तुम्हें इस तरह से सजा देंगे, तो वो मर गया बंदा, ना सोच करके बड़ा दिलचस्प टॉपिक स्टार्ट हो गया था तो जी। शौक से मर जाता है। वैसे हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने वाकई एक वाकया सुनाया था, ठीक है, आपके अब्बुओं को तो शायद हम सुना भी चुके हैं, आपको शायद नहीं सुनाया, कि पंजाब में ना किसी गांव का एक रहने वाला था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, तो वो रहता किसी गांव में था, लेकिन फिर जब वो प्रोफेसर बना वो शायद लाहौर शिफ्ट हो गया था, ठीक है, तो लाहौर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कहीं पे पढ़ाता था, तो उसका जो गांव था ना, वो गांव एक ऐसी खास जगह पर था कि जहां पे बहुत ज्यादा सांप हुआ करते थे, ये कुछ जगह होती है जहां पे ज्यादा इन्फेस्टेड बाय स्नेक्स वगैरह इस तरह होता है ना, तो वो शख्स जो है ना, वो कहता था मैं अपने गांव वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे सांप काट लेगा, ठीक है, तो कोई उसको बुलाता, उसके खानदान में कोई शादी होती, कोई अच्छा इवेंट होता, कोई बुरा इवेंट होता, लोग उसको बुलाते, भाई आ जाओ अपने खानदान वालों के पास, अच्छा इवेंट, कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे सांप काट लेगा, ठीक है। तो हजरत जी ने हमें वाकया सुनाया कि एक दफा ना उसके किसी करीबी की शादी थी, तो लोगों ने उसको बुलाया, उसने कहा नहीं मुझे सांप काट लेगा, मैं नहीं जाता, तो लोगों ने कहा यार इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है, आ जाओ, हम ऐसा करते हैं कि होते हैं ना कुछ लोग जो सांपों के एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, सपेरे जैसे, उनको सांपों को हैंडल करना भी आता है और सांपों को ट्रैक करना भी आता है वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं तुम्हारे साथ 2 आदमी कर देते हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं ना, ठीक है, तो वो एक तुम्हारे आगे चलेगा, एक तुम्हारे पीछे चलेगा, और दोनों जो है ना तुम्हें वॉच करेंगे कि कोई सांप कोई आके तुम्हें ना काट ले, तो तुम बेपरवाह होकर के आ जाओ। तो जब इतना लोगों ने फिर बाकायदा ये असबाब भी अरेंज कर दिया ना, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं आता हूं, ठीक है। अब वो बंदा जो है ना, वो इस तरीके से अपने गांव जा रहा था, क्या हुआ कि उसका पैर जो है ना, वो पड़ा एक ऐसी जगह के ऊपर जहां पर या तो वो सांप का बिल था या सांप खुद ही था, किसी को वो नजर ही नहीं आया, उसका पैर पड़ा और सांप ने उसको काटा, वो मर गया वहीं पे। हजरत जी ने वाकया सुना करके फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ जैसा गुमान रखोगे ना वैसे ही होगा तुम्हारे साथ, ठीक है, वो पहले से मुझे सांप काट देगा, मुझे तुम्हें क्या पता भाई तुम्हें सांप काटेगा, तुम्हारे क्या मसला है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो इस तरीके से इंसान बन जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसके साथ वैसे ही मामला कर देते हैं, इस वजह से अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखना ये भी बहुत जरूरी चीज है जी।
एक साल से ज्यादा वो कभी नहाता नहीं था, तो उसे लोग कहते थे नहा, तो कहता था मैं जब भी नहाया तो मैं मर जाऊंगा, तो उसे लोगों ने जबरदस्ती करके नहलाया और नहाने के बाद मरी।
नहाने से मर गया, बदबू आ रही होगी उसके अंदर, तो दूसरे लोग नहीं मर गए ऐसी बदबू सुनकर जी, क्या लिख रहे हैं, व्हाट इफ, gun guman that you are putting in Allah subhanahu wa ta'ala, you feel like it's impossible. What if the guman that you are putting in Allah subhanahu wa ta'ala, you feel like it's impossible? आपका सवाल ही इतना क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई बात अल्लाह ताला से गुमान रखी है कि जी अल्लाह ताला ये काम नहीं कर सकते या इम्पॉसिबल, अगर आप ये पूछ रही हैं तो फिर अल्लाह ताला फिर वो काम नहीं करेंगे आपके। तो मतलब अना इंदा जन्ने अब्दी भी, ये हदीस कुदसी है जो कि हदीसों में भी स्ट्रॉन्गेस्ट जो फॉर्म होती है ना, हदीस कुदसी के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। अच्छा, तो हदीयतुल कुबरा तरान का के जमन में फिर ये वाला वाकया हुआ और नबी अलैहिस्सलाम के दुआ करने से वो ऊंट ठीक हो गए। बहरा तो नबी अलैहिस्सलाम गए वहां पे, सामान बेचा, वो सारे नस्तूरा वाला वाकया भी पेश आया, दूसरे बंदे का जिसने झगड़ना शुरू कर दिया था वो वाला वाकया भी पेश आया। फिर नबी अलैहिस्सलाम जो है वो वापस तशरीफ ला रहे थे तो मैसरा ने नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं आपको एक तजवीज देता हूं कि अगर आप मेरी बात मानना चाहें तो मान लें। वो ये है कि आप जो है ना ऐसा करें, काफले से आगे चले जाएं। काफला तो अपनी स्पीड पे चलता है ना, सारे लोगों को एक साथ लेके चलना होता है तो स्पीड आपकी स्लो हो जाती है, तो आप ना अकेले तेजी से जो है ना वो अपने ऊंट को दौड़ाते हुए आगे चले जाएं और हदीयतुल कुबरा रतान के पास पहुंचे और उनको जो है ना वो अच्छी खबरें दें कि भाई हमने इतना प्रॉफिट बनाया है और इतना फायदा हुआ और ये हुआ और वो हुआ। तो हो सकता है हदीयतुल कुबरा रतान जो है ना वो बहुत खुश हो जाए और आपको ज्यादा पेमेंट कर दें, ज्यादा मुआवजा दे दें, और आपको जो है ना जितना पहले कमिट किया था कि 2 ऊंट कमिट किए थे तो आपको शायद 4 ऊंट दे दें। इस तरह से ना उसने बात करी तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा भी ठीक है, मेक सेंस, तो मैं चला जाता हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर बात मान करके वो पूरे काफले से ज्यादा आगे बढ़ करके ना वो हदीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंच गए। ठीक है, अच्छा, हदीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो उस वक्त अपने घर के बाला खाने या छत के ऊपर गोया के बैठी हुई थी और आप के साथ दूसरी खवातीन भी थी। तो नबी अलैहिस्सलाम जब आ रहे थे ना, तशरीफ ला रहे थे, तो उन्होंने छत से देखा कि आप सरसरम के ऊपर एक बादल का टुकड़ा जो था ना वो साथ साथ चल रहा था और साया कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ना अपने साथ जितनी खवातीन थी उन सबको दिखाया कि देखो ये क्या हो रहा है, वो आ रहे हैं और उनके ऊपर एक बादल साया कर रहा है। ठीक है, इससे एक और बात याद आई कि हद के एक और भी ना वाकया किताब में लिखा हुआ है कि इससे पहले की बात है कि एक दफा ना मक्का मुकरमा में ईद का वक्त था। ठीक है, वो भी हर कौम की कोई ना कोई ईद होती है, नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद तो फिर ईदें हमारी दो बन गई ना, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हर कौम के अंदर कोई ना कोई सेलिब्रेशन के इवेंट्स हुआ करते थे। तो मक्का मुकरमा में इस तरह से कोई ईद का दिन था, खुशी का दिन था उन लोगों का। तो सारी खवातीन जो है ना वो साथ बैठी हुई थी कि एकदम से जो है ना वो एक आदमी आया आवाज लगाने वाला, उसको आवाज लगाने वाले को हातिफ कहते हैं। ठीक है, तो उसने आकर के जो है ना वो जोर से इन औरतों को कहा कि इन्नहु सयकूनु फी बलद कुन्ना नबीयुन, कि अनकरीब तुम्हारे शहर में ना एक नबी आने वाला है। ठीक है, युकालु लहु अहमद, उसको अहमद कहा जाएगा, उसका नाम अहमद होगा। फमन इस्तताअ मिन कुन्ना अन तकूना ज़ौजतन लहु, तुम में से जिसके लिए मुमकिन हो ना कि उसकी बीवी बन जाओ, तो वो उसको चाहिए कि वो ये काम कर ले, यानी उससे शादी कर ले। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वो सारी औरतें जो थी ना उन्होंने कहा किस किस्म की ये बात कर रहा है आकर के ना, उन्होंने पत्थर उठाए, उसको पत्थर मारा, सबसे सबने पत्थर मारा ना, कंकरियां ना, तो इतना पत्थर मोटा हो तो मर ही जाता वो, इतना संसार हो जाता वो, कंकरियां उठाई जो पड़ी होती थी वहां पे, कंकरियां उठाकर ना सबने मारी, लेकिन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कंकरी नहीं मारी। ठीक है, तो फरमाते हैं कि बस सब ने जो है ना उसको कंकरी मारी लेकिन हदीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं मारी, बाकायदा हदीस है अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन। ठीक है, तो इस तरह के ना बहुत सारे वाकयात पेश आ रहे थे कि कोई हातिफ आता था वो सदा लगाना शुरू कर देता था कि बस इस उम्मत का नबी आने वाला है, कभी कोई तौरात का आलिम आके बात कहना शुरू कर देता था, कभी कोई इंजील का आलिम आकर के कहना शुरू कर देता था, कभी कोई काहिन आकर के, इस सीरत तो नबी में हम बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, काहिन आकर के चिल्लाना शुरू कर देता, ओ कहा आ गया नबी, आ गया नबी, आ गया, इस तरह की बात है ना। तो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी जहीन थी कि शी वॉज ऑलवेज पेइंग अटेंशन टू ऑल ऑफ दीज थिंग ना, और दूसरी औरतों की तरह वो इन बातों को लाइटली नहीं ले रही थी। ठीक है, कि पत्थर उठा के मारना शुरू कर दो ऐसे बंदर को, तो वो एब्जॉर्ब कर रही थी इन सारी बातों को, और उनके दिल के अंदर ये तमन्ना थी कि मुझे अगर उन नबी का दीदार नसीब हुआ तो मैं उनके ऊपर ईमान लेकर के आऊंगी, मैं उनकी सहाबियां बनूंगी, मैं उनकी बात मानूंगी। ठीक है, तो अब जो है ना, ये जो वाकयात नबी अलैहिस्सलाम के साथ पेश आ रहे थे, तो अब ये देख रही थी उसी नजर से कि क्या वाकई ये वही नबी है कि जिनकी इतनी सारी बातें हमें लोग बता रहे हैं। तो ये वाकया हुआ ना, तो जब उन्होंने सारी औरतों से को भी दिखाया, फिर नबी अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए, उनके साथ जो है वो बात हुई, खदीजतुल कुबरा ने बड़ी खुशी का इजहार किया। फिर खदीजतुल कुबरा ने ना एक और काम ये किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप वापस जाइए काफिले में, ठीक है, और मैसरा को साथ लेकर के अब आप आइए। ठीक है, तो किताब में लिखा है कि ये क्यों किया हजरत अलकुबरा ने, वो इसलिए किया कि वो और मेक श्योर करना चाहती थी कि मुझे जो ये बादल का टुकड़ा आता हुआ नजर आया था ना इनके ऊपर, क्या ये इत्तेफाक तो नहीं था कहीं, बाय चांस तो ऐसा नहीं होगा, होता है ना अभी कभी बात बदली जो होती है हमारे ऊपर से भी गुजरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो मेक श्योर करना चाहती थी कि मैं वापस भेजूंगी और फिर मैं देखूंगी कि क्या ये बादल जो है वो वाकई इनके ऊपर चल चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो उन्होंने वापस भेजा, नबी अलैहिस्सलाम गए और उन्होंने देखा कि जिस शान से नबी अलैहिस्सलाम आए थे उसी शान से नबी अलैहिस्सलाम वापस भी गए थे। ठीक है, उसके ऊपर उलमा ने ये नुक्ता भी लिखा है कि क्या नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हर वक्त बादल का साया होता था, तो इसका जवाब फिर उलमा ने लिखा कि नहीं, हर वक्त नहीं होता था। ठीक है, और इसकी दलील क्या है कि हर वक्त नहीं होता था, कोई बताएगा कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हर वक्त बादल का साया नहीं होता था, इसकी दलील में कोई वाकया या कोई हदीस? एक मिनट फांदो,
पहाड़ में द्वार बना था, अगर पहले से ही साया होता तो शायद पहाड़ में।
पहाड़ में जो गार बना था ओहद पहाड़ में, वो साये के लिए तो नहीं बना था, वो तो दुश्मनों से पनाह के लिए बना था, क्योंकि दुश्मन आपसे परसू कर रहे थे ना, फॉलो कर रहे थे। तो क्या कोई और? इन्होंने बड़ा मंतकी जवाब दिया कि अभी धूप ही हर वक्त नहीं होती, तो इसे छोटे से बादल के साए की हर वक्त जरूरत भी नहीं पेश आती। चले, और कोई हदीस? बारक पसीने से खुशबू आती थी, तो हम तो साए की बात कर रहे हैं, पसीने से खुशबू, और कोई?
जब आप
माशाल्लाह, अहमद भाई छा गए इसको हमारे कॉलेज में कहते थे, छा गए। ठीक है, जब हिजरत के वक्त नबी अलैहिस्सलाम मदीना मनव्वरा तशरीफ ला रहे थे ना, तो साथ कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रहता ना थे। ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक रहता ना और नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल डिट्टो कॉपी। किस तरह से डिट्टो कॉपी? शक्ल मुख्तलिफ थी नबी अलैहिस्सलाम से, ठीक है, लेकिन हुलिया जो था ना दोनों का बिल्कुल एक जैसा था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि नबी है तो कोई खास किस्म की पगड़ी पहने हुए और अबू बकर सिद्दीक डिफरेंट किस्म की पगड़ी पहने हुए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, एक ही जैसा कपड़ा, एक ही जैसी पगड़ी, एक ही जैसा जो है वो चाल ढाल भी। अबू बकर सिद्दीक रहता हूँ तो यानी एक एक चीज कॉपी करते थे ना हमारे अजीज रहमतुल्लाह की तरह से। ठीक है, तो लोगों को फिर शक हुआ कि भाई इन दोनों में नबी कौन है, समझ में नहीं आ रहे, राइट? तो उस वक्त क्या हुआ कि बादल का साया हटा, धूप जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर आई, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और उन्होंने अपने चादर से जो है ना नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर साया कर दिया। ठीक है, तो इससे लोगों को पता चला कि आका कौन है और गुलाम कौन है। गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और आका हजरत नबी अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, अच्छा, एक और भी हदीस हमने रिसेंटली ही पढ़ी है कि एक आदमी था, शायद जदान उसका नाम था, अब्दुल्ला बिन जदान गालिबन उसका नाम था, बहुत ज्यादा सखी था, यानी बहुत लोगों को खाने खिलाया। अभी खाने की पूरा आपने प्रेजेंटेशन भी सुनी है ना, ठीक है, तो खाना खिला के खिलाने के ऊपर लोगों को अल्लाह ताला कितना खुश होते हैं, तो बहुत खाने खिलाया करता था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस बंदे का जो प्याला होता था ना, जिस प्याले में वो खाना लोगों के लिए रखता था, ठीक है, तो वो प्याला इतना बड़ा होता था कि मक्का मुकरमा में मैं अक्सर वहां से गुजरते हुए उस प्याले के साए में खड़ा हो जाता था धूप से बचने के लिए। धूप से बचने के लिए उस प्याले के साए में खड़ा हो जाता था। इमेजिन करें कि वो प्याला कितना ह्यूज होगा, राइट? इतना ऊंचा तो होगा ना कि बंदा उसके साए में आके खड़ा हो सके। ठीक है, तो इससे भी पता चलता है कि हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर साया नहीं होता था, कभी प्याले के साए में भी खड़ा होना पड़ता था नबी अलैहिस्सलाम को। ठीक है, तो इस वजह से फिर वो उसूल जो है ना वो हमेशा याद रखा करें। ये अक्सर ये उसूल की जरूरत पड़ती है। वो क्या कि फिर जब इस तरह होता था तो फिर उलमा ये क्यों कहते हैं कि हर वक्त आया रहता था, तो वो उसूल फिर लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सर के ऊपर कुल का हुक्म लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एक जैसा मामला होता। सही। अच्छा, एक हमारे हजरत जी के खलीफा साहब ने पिछले दिनों ना एक बड़ा अच्छा था, सीनियर हमारे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग भाइयों की तरह हैं बल्कि बड़े भाई, तो उन्होंने ना पिछले दिनों एक मैसेज भेजा कि भाई हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को जो है ना वो कहा नहीं कि तुम जुब्बा पहनो और तुम दाढ़ी रखो, और तुम लोग खुद ही देख करके मुतासर हो जाते थे और दाढ़ी रखना शुरू कर देते थे और जुब्बा पहनना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो अब उसमें भी कोई सुन करके कहे कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होगा कि हर कभी भी नबी कभी भी हजरत जी ने किसी को कुछ नहीं कहा। नहीं, हजरत जी कभी कह भी दिया करते थे, ठीक है, दाढ़ी रखने के लिए भी कह दिया करते थे लोगों को, लेकिन ज्यादातर नहीं कहा करते थे। लोग खुद जो है ना मुतासर होकर के, खुश होकर के रख लिया करते थे, खुद जो है वो खुश होकर के नबी यानी मुतासर होकर के जुब्बा भी पहनना शुरू कर दिया करते थे, लेकिन कभी कभी हजरत जी कह भी दिया करते थे। तो फिर उसको हम ऐसी एक्सप्लेन करेंगे कि भाई लिल अक्सरे हुक्मुल कुल, इस वजह से उन्होंने ये बात कही। जी
तो एक बंदा था वो पिछले पास आके बैठा था, तो उनकी तारीफ थोड़ी सी मतलब शेप शेप थोड़ी
अच्छा
सी पीछे से कटिंग, तो हनी जी ने उनको कहा था कि इस तारीफ को
इच्छा छोड़ दो। सही, ठीक है। अच्छा, नुमान अंकल भी आ गए तो हम उनको क्लास के टाइम देते हैं। आप तश्रीफ लें नुमान, क्या रखें? अगर ऐसा होता तो सहाबा से कसीर रिवायत होती शायद, अगर ऐसा होता तो सहाबा से कसीर रिवायत होती शायद। किस चीज की कसीर रिवायत होती है? धूप होने की या धूप ना होने की? नहीं, इतना इसको दौरे हदीस की क्लास में लगाने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह, और आप आ जाए जब, और किसी को अल्लाह तआला दिखाना चाहे तभी नजर आ सके। जी ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे हम क्लास रोकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
Recording stopped.